भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया।
ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक मधुर गीत के कुछ स्टैंजा सुने। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नव युग का निर्माण करने शिव ने जिसमें स्थान लिया। इस प्रकार के शब्द थे इस गीत में। तो भारत की भूमि पर जिस दिव्य पुरुष ने जन्म लिया और शिव ने उनमें स्थान लिया, उसकी कुछ झलकियां आपको मैं सुनाने जा रही हूं। जिसने एक बीज रोपा और आज उस बीज का परिणाम वट वृक्ष के रूप में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत के कोने कोने में और विश्व के 120 देशों में अपनी शाखाओं द्वारा यह ईश्वरीय कार्य कर रहा है, जिसमें आप सब भी भाग लेने के लिए यहाँ शांति वन में पधारे हैं। अवश्य आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये संस्था कैसी है, कब शुरू हुई, किसके द्वारा हुई, कैसे ये सब चल रहा है और हम इसमें क्या भाग ले सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। कई बातें मन में आती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उस दिव्य पुरुष के बारे में जिसके एक के जीवन समर्पण से मानो आज इतना बड़ा कार्य हो रहा है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनकी जीवन कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं। मेरा भी यह सौभाग्य रहा है जो मैंने भी उनसे बहुत कुछ प्राप्ति की। बाल्यकाल में ही हम आ गए, इसलिए उनके निकट जाने का भी मेरा सौभाग्य रहा। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था, जो हैदराबाद सिंध में लखीराज बाबू के नाम से बड़े प्रसिद्ध जौहरी थे, हीरे और जवाहरात का धंधा करते थे। उनके ग्राहक छोटे मोटे लोग नहीं थे, वैसे ही हीरे जवाहरात कौन खरीदते हैं, बड़े लोग ही खरीदेंगे और बहुत कम लोग जाते हैं ज्वेलरी की दुकान में। तो हीरे जवाहरात लेने वाले ग्राहक भी तो बहुत अच्छे नामी ग्रामी लोग ही होंगे। तो बाबा के जो ग्राहक थे वो तो राजे महाराजाएं थे। उस समय भारत में राजाओं का राज्य था और खास करके राजस्थान में बहुत राजाएं थे। एक एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना राजा था, गुजरात में भी थे, सब जगह थे, सारे भारत में अपने अपने उनके रजवाड़े थे। तो बाबा उनके पास अक्सर जाया करता था राजा जब बाबा को देखते थे तब उनको आता था कि भगवान ने शायद कोई भूल कर दी है, जो हमें राजा बनाया है और इनको तो एक जौहरी रखा है, बिजनेसमैन रखा है, परंतु इनके संस्कार इतने रॉयल थे कि इनको राजा बनना चाहिए था, क्योंकि राजा माना जिसमें रॉयल संस्कार हो, बड़े शालीन संस्कार हो। तो ये कहीं भगवान ने भूल तो नहीं कर दी, ये कई बार वो बाबा को कहते थे। तो बाबा कहते थे नहीं, इसमें भी कोई राज होगा जो मुझे इस प्रकार का व्यापार दिया है। तो सचमुच वो व्यापार करने वाला फिर धीरे धीरे कैसे सच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करने लगा, वो हम देख रहे हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। राजा भारत के थे और साथ साथ नेपाल के राणा परिवार उस समय राज्य करते थे, तो वे भी उनके ग्राहक थे। कलकत्ता में उनकी बहुत बड़ी दुकान थी, उनके पार्टनर कलकत्ता में रहते थे और दुकान संभालते थे, और बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे और कलकत्ता मुंबई कई स्थानों पर बाबा जाते थे कस्टमर्स के पास। तो इस प्रकार उनका धंधा बहुत अच्छा बढ़ा हुआ था, और कलकत्ते में तो अक्सर करके अंग्रेज लोग भी बहुत आते थे, वहीं से भारत में एंटर करते थे जहाजों में। हवाई जहाज का तो इतना नहीं था उस समय प्रभाव, स्टीमरों में आते थे और व्यापार भी करने लिए हीरे स्टीमर में आते थे जाते थे। तो कलकत्ता में इनकी दुकान पर बहुत अंग्रेज भी जाते थे, यहाँ तक कि क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ वो भी इनके दुकान में गए हुए थे। तो कहने का भाव है कि बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन व्यापारी के साथ साथ बाबा बहुत बड़े भक्त भी थे। गीता का पाठ नित्य किया करते थे, वल्भाचारी थे, पक्के वल्भाचारी, कट्टर वल्भाचारी। श्रीनाथ द्वारे में आप अक्सर जाया करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, नारायण की, विष्णु की भक्ति करते थे। विष्णु का चित्र इनके पॉकेट में सदा रहता था, अपने मकान में भी इन्होंने विष्णु का बड़ा चित्र पेंट करवाया था, ताकि उनको महसूस हो कि मैं तो अपने इष्ट के सामने सदा ही विराजमान हूँ। तो भक्त भी थे, ट्रैवलिंग करते समय बिना गीता का पाठ किए कभी पानी तक नहीं पीते थे, इतनी उनकी भक्ति अटूट थी। कोई भी ऐसा मंदिर भारत का छोड़ा नहीं होगा, सब जगह यात्राएं करते थे, यहाँ तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी। तो ऐसे भक्त थे, और भक्त के साथ साथ दानी भी थे, क्योंकि धनी थे तो उनके पास लोग बहुत जाते थे, धन मांगते थे। तो गरीबों को दान करना ये उनके लिए आम बात थी, यानी कहने का भाव है कि एक और धनी थे, दूसरे और दानी थे, तीसरे और भक्त थे। और ऐसा कोई शास्त्र भी नहीं होगा जो उन्होंने पढ़ा न हो, बहुत कुछ अध्ययन भी करते थे। जीवन में 12 गुरु किए थे उन्होंने, तो इतना सब कुछ करते हुए भी बाबा के मन में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनका वो समाधान ढूंढने लगे, अनेक गुरुओं से पूछने लगे, शास्त्रों में ढूंढने लगे। वो प्रश्न थे कि आखिर सत्य क्या है, ईश्वर कौन है, हम कौन है, हम क्यों आए इस संसार में, ये दुनिया भगवान ने आखिर क्यों बनाई, इतना दुख क्यों है। मानव इतना गिर क्यों गया है अपने कर्मों से, वो मानवता कहाँ चली गई। हालांकि जितनी आज मानवता गिरी है, आज से 70-71 वर्ष पूर्व इतना नहीं था, लेकिन फिर भी दुनिया में इतना भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, ये सब क्यों है? क्या दुनिया सदा ही ऐसे थी? ये विकार क्यों सताते हैं? ये विकृतियां, कमजोरियां, ये क्यों इस दुनिया में फैल रही है? क्यों क्यों प्रश्न करते थे बाबा, और अक्सर अपने गुरुओं से पूछते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि ऐसा संतोषजनक जवाब मिला है। तो ये प्रश्न सदा ही उनके मन में उभरते रहते थे, एक के बाद एक गुरु करते थे और उनसे पूछते थे। तो गुरु तो उनको यही कहते थे कि लखीराज बाबू, ये तो भगवान ही तुमको जवाब दे सकता है, हम तो जितना जानते हैं उतना आपको बता रहे हैं। तो उत्सुकता, जिज्ञासा सत्य को पहचानने की उनमें बहुत थी। तो कैसे अनायास उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया, वो घड़ी एक विचित्र घड़ी थी। गीता का पाठ तो वो नित्य करते थे, गोरखपुर में गीता प्रेस है, वहां से बाबा नित्य गीता की किताब मंगवाते थे और सबको बांटते थे। ये उनका उनकी सेवा थी कि लोग गीता को पढ़े। रोज बाबा गीता का पाठ घर में भी करते थे, अपने घर वालों, पड़ोसी, मोहल्ले वालों, रिश्तेदारों को बुलाते थे और बाबा स्वयं गीता का पाठ करते थे, गीता बांटते थे सबको। तो एक दिन की बात है, बाबा अपने घर में सत्संग में बैठे थे, गुरु सत्संग कर रहे थे, क्योंकि गुरुओं को अपने घर में बुलाते थे, बड़ा घर था, तो गुरु सत्संग कर रहे थे और सब बैठे थे सत्संग सुन रहे थे, गीता पर प्रवचन चल रहा था। तो अचानक वो सत्संग में बैठे ही थे और बैठे बैठे जैसे आंखें बंद हो गए, ध्यान में चले गए, इतने एकदम ऐसे शांत हो गए आंखें बंद करके जो उनको कुछ सुध-बुध बाहर की नहीं रही। सत्संग समाप्त तो हो गया और सब उठ के चले गए, लेकिन बाबा वहीं के वहीं बैठे रहे। तो परिवार वालों को आया कि बाबा ने क्या अनुभव कर किया होगा, आंखें अभी तक बंद है, अंदर ही अंदर क्या देख रहे होंगे। तो गुरु को भी उत्सुकता हुई, तो गुरु ने भी सोचा कि आंखें खोले तो हम उनसे पूछें कि क्या अनुभव किया। तो जैसे आंखें खोली, गुरु उनके सामने बैठे हैं, एकदम उठ करके गुरु के पांव छूने लगे, गुरु जी को हाथ जोड़ा, साष्टांग नमस्कार किया कि गुरु जी आपने मुझे आज ऐसा दिव्य दर्शन दिला दिया है, मेरी तो सब इच्छाएं आपने पूरी कर दी। तो गुरु को उत्सुकता हुई कि क्या दर्शन किए, किसका किया, कैसे कह रहा है कि सब इच्छाएं पूरी कर दी, ये सब गुरु जी आपकी कृपा थी। तो गुरु ने पूछा आखिर क्या अनुभव किया, तो उसने कहा कि वैसे मैं सत्संग में बैठा था, अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रस्सी ध्यान की किसी ने खींची, बुद्धि की रस्सी खींची और मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन मैं अंदर ही अंदर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार करने लगा। विष्णु के कई रूप, जैसे श्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, वेंकटेश्वर, बालाजी, ये सब अलग अलग विष्णु के ही रूप हैं। वो मेरे सामने आते गए और एक एक ने मुझे ऐसा विचित्र वरदान दिया जो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, आप ही गुरु जी हमें बताएं। तो गुरु ने पूछा क्या वरदान दिया। अक्सर करके जब किसी को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो इष्ट उनके सामने खड़ा हो जाता है और दर्शन देकर ऐसे वरदान देता है, तथास्तु, यानी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कोई किसी को हनुमान के दर्शन होते हैं, किसको देवी के दर्शन होते हैं, किसको कृष्ण के दर्शन होते हैं, किसी को राम के दर्शन होते हैं, जिस जो उनका इष्ट होता है। तो इनका इष्ट तो विष्णु था, तो विष्णु उनके सामने खड़े हुए, लेकिन जो साक्षात्कार में जो वरदान दिया वो तथास्तु का वरदान नहीं था, क्योंकि वैसे भी बाबा को कोई इच्छाएं तो थी नहीं। तथास्तु माना वैसा ही होगा, जो आपके मन में इच्छा है वो पूरी होगी। इनके मन में कोई इच्छाएं तो थी नहीं संसार के लिए प्रति, सब कुछ ठीक था, परिवार बहुत अच्छा था, 5 बच्चे थे, सुखी परिवार था, और बिजनेस इतनी अच्छी थी, नाम इतना अच्छा था, दुनिया में इसको कोई कमी नहीं थी, जो कोई कमी हो और भगवान से वो मांगे। लेकिन ये वरदान जो दिया वो विचित्र वरदान था, और क्या था वरदान? अहम चतुर्भुज तत् त्वम, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूं वैसे तुम भी वही हो। अब एक एक करके विष्णु के रूप सामने आते गए और वही वरदान उनको देते गए, अहम चतुर्भुज तत्त्वम तत्त्वम तत्त्वम, तुम भी वही हो, तुम भी वही हो। तो बाबा ने जब आंख खोली और उनको लगा ये विष्णु जैसे मेरे सामने, और मुझे कहा तुम भी वही हो, मैं कैसे वही हूँ, ये तो मेरे इष्ट हैं, ये तो मेरे भगवान हैं, मैं इनकी भक्ति करता हूँ, इनका फोटो मेरे पास है, गीता का पाठ करता हूँ मैं नित्य, तो ये इष्ट मुझे कैसे कह रहे तुम भी वही हो, मैं थोड़ी ही हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, सेवक हूँ, भक्त हूँ। तो हे गुरुजी मुझे बताइए इसका राज क्या है। तो गुरु भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसका राज क्या हो सकता है, क्योंकि इष्ट ऐसे कैसे कहेगा तुम भी वही हो। परंतु गुरु ने ये जरूर कहा कि लखीराज बाबू, अवश्य भगवान को आपसे कुछ कराना है, इसलिए आपको इस प्रकार का दर्शन दिया जो भगवान जैसा कार्य आपको करना है। ये उसको राज अपने तरफ से बताया। तो बाबा के मन में आया मुझे भगवान जैसा कार्य करना है, क्या कार्य करना है, मुझे बताए भगवान कि मुझे क्या करना है, मैं तैयार हूँ, जो भगवान का मुझे आदेश मिलेगा मैं करने को तैयार हूँ। तो गुरु ने कहा कि भगवान ने आपको तैयार किया है, और इसके बाद आपको और भी जरूर कुछ अनुभव होंगे, और भगवान को आपसे कुछ जरूर कराना है, आप में वो शक्ति है, वो महानता है, और भगवान आपसे कुछ कराएंगे। इसके लिए मैं तो यही समझता हूँ, गुरु ने कहा कि थोड़ा समय आप एकांतवास में चले जाइए, एकांत में रहेंगे तो भगवान की प्रेरणाएं आपको प्राप्त हो सकेगी। तो बाबा को आया कि मैं एकांतवास में चला जाऊं, तो सचमुच उस साक्षात्कार के बाद बाबा के अंदर में वैराग्य आ गया, संसार से वैराग्य। हीरो को देखते थे तो बाबा को लगता था ये हीरे नहीं है लेकिन पत्थर है, इतना अंतर आ गया उनकी दृष्टि में, उनकी वृत्ति में, उनकी स्मृति में, जो वो खुद ही नहीं समझ पाए कि आखिर ये मुझे क्या हो गया है। तो अपने घर वालों से छुट्टी लेकर सोचा मैं एकांतवास करने के लिए बनारस जाऊं, गंगा के किनारे पर जाकर बैठूं, शायद भगवान मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा दे। तो परिवार से छुट्टी लेकर बनारस चला गया। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे जो अक्सर उनको बुलाते रहते थे कि कभी आकर यहाँ एकांत का अनुभव करो, गंगा घाट पर बैठ के तपस्या करो। तो इस लक्ष्य से बाबा बनारस चले गए। तो अक्सर वहाँ बनारस में भी गंगा घाट पर जाते थे और एकांत का अनुभव करना चाहते थे, तो उनको बहुत अच्छा लगता था, और ऐसे लगता था कि जैसे भगवान मेरी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। तो एक दिन की बात है कि वो अपने मित्र की कोठी के बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बैठे थे एकांत में, क्योंकि विष्णु का ही वो ध्यान करते थे, वही उनके इष्ट थे। लेकिन जैसे ही वो बैठे और उनका ध्यान करने लगे तो एक विचित्र साक्षात्कार उनको हुआ, जिसमें बाबा ने इस दुनिया का विनाश तीन रूपों से हो रहा है ये देखा। एक और अणु युद्ध, दूसरी और ग्रह युद्ध और तीसरी और प्राकृतिक आपदाएं, तीनों ही जैसे उनके सामने उपस्थित हो गए और इस दुनिया का विनाश हो गया। अणु युद्ध में क्या देखा कि आकाश में हवाई जहाज मंडरा रहे हैं और हवाई जहाजों से कोई चीज नीचे गिरती है और जैसे वो धरती पर पहुंचती है तो आग निकल आती है और इतनी आग भड़क जाती है जो शहर का शहर खत्म हो जाता है, लोग उसमें जलकर मर जाते हैं। फिर ग्रह युद्ध देखा कि कैसे लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दो का सिर काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, एक दो की हत्या कर रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, तलवारें चल रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं और खून की नदियां बह रही है। बहुत कुछ जैसे बाबा ने देखा, बड़ा भयावह दृश्य। और फिर देखा सब के सब मर गए और एकदम जैसे कब्रिस्तान बन गया, इतनी लाशें चारों ओर पड़ी है, सब मर गए। तो बाबा को लगा ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या दुनिया का इस प्रकार विनाश हो जाएगा। फिर तीसरी ओर बाबा ने देखा एक एक तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों ही तत्व ऐसा प्रकोप ला रहे हैं जो देखते ही देखते सभी तत्वों ने एकदम भयंकर महाविनाश ला दिया। एक और कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं आंधी आ रही है, तूफान हो रहा है, अतिवृष्टि हो रही है या अनावृष्टि है, एकदम सूखा हो गया, आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और लोग वो बिजली से मर रहे, न जाने क्या क्या जैसे आपदाएं चारों ओर हो रही है। और एकदम देखते ही देखते देखा कि सर्वनाश हो गया, सब कुछ जैसे जलमग्न हो गया, एक पत्ता नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक पंछी नहीं, सब कुछ जैसे खाक हो गया। तो बाबा को आया कि ये क्या, ये दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी, फिर हे भगवान ये दुनिया बनाने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें। तो अब प्रश्न दूसरे प्रकार के थे कि ये दुनिया इस प्रकार कैसे खत्म होगी, ये सब संसार नष्ट हो जाएगा तो फिर इस संसार का मकसद क्या है। ये भगवान से वो पूछने लगा, अंदर ही अंदर मनन करना, चिंतन करना, ये उनकी फिर रूटीन हो गई। तो फिर एक दिन बाबा ने और एक दृश्य देखा जिसमें परमधाम का उनको साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति का एक महतत्व जो सुनहरा लाल लाल प्रकाश, जैसे ये आकाश तत्व हम देखते हैं नीला आकाश, तो वो सुनहरा लाल आकाश के रूप में एक पूरी दुनिया स्वयं प्रकाशित महतत्व ब्रह्म तत्व, जिसका साक्षात्कार उस समय ब्रह्मा बाबा ने किया। उस समय तो उनका नाम लखीराज बाबू या दादा लेखराज इस नाम से प्रसिद्ध था हैदराबाद सिंध में। और उसमें देखा छोटे छोटे सितारे, जैसे आकाश में रात को सितारे देखते हैं तो छोटे छोटे सफेद सफेद चमकते हुए सितारे, ये आत्माएं देखी, अनेक आत्माएं, करोड़ों आत्माएं चमक रही है उस सुनहरे लाल प्रकाश के अंदर। और धीरे धीरे क्या देखा, एक एक सितारा वो उस आकाश से, उस महतत्व से नीचे उतर रहा है, जैसे तारे टूटते ना, तो वैसे देखा वो छोटे छोटे सितारे धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। और जैसे नीचे पहुंच रहे हैं धरती पर, वो धरती जो एकदम जलमग्न हो गई थी, विनाश को प्राप्त हो चुकी थी, वो एक एक सितारा जैसे आता गया, धीरे धीरे वो वातावरण धरती का बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, एकदम हरे भरे पहाड़ आ गए, नदियां आ गई, महल आ गए, हरियाली आ गई, बगीचे आ गए। और देखते ही देखते बाबा ने क्या देखा कि वो सितारे देवता का रूप धारण करते गए, एक एक देवता धरती पर उतरता गया और उतरते उतरते जैसे सारा ही वातावरण देवताओं से भर गया और वो देवताएं जैसे रास कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एक ऐसी खुशी का वातावरण चारों ओर छा गया, मानो वो सतयुगी दुनिया धरती पर आ गई। और एक आकाशवाणी बाबा ने सुनी, दूर से कोई आवाज आ रही थी कि ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। इस कलयुगी महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद महाविनाश होगा और उस महाविनाश के बाद सतयुगी दुनिया आएगी, जिस दुनिया को तुम्हें बनाना है। तो बाबा को आया मुझे बनाना है और ऐसे दुनिया इस प्रकार सब विनाश हो जाएगी, फिर एक दूसरी दुनिया आएगी और वो मुझे बनानी है, मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे पास कौन सी शक्ति है ये बनाने की। हे भगवान, तुम अपने राज खोलो, मुझे स्पष्ट करो कि ये दुनिया कैसे मुझे बनानी है। मैं तो आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, सेवक हूँ, क्योंकि यही अक्सर हम भक्ति में कहते हैं, तो वो तो भक्त के रूप में ही थे। तो उसी समय गुरु को याद किया कि गुरु ने उनको कहा था भगवान को तुमसे कुछ कराना है, लेकिन ये राजी था कि क्या कराना है और मैं कैसे ऐसी दुनिया बनाऊंगा। फिर एक आवाज आई कि उठो, जागो और ये कार्य आरंभ करो। बस जैसे एक भगवान का उसे फरमान मिल गया। अब उसके लिए क्या करना होगा, अभी तो वो बिजनेस ही कर रहे थे, परिवार था उनका, ये सब क्या करना है उसको ये भी समझ में तो आया नहीं, लेकिन एक वैराग्य तो अवश्य आ गया उनके जीवन में। और सीधा बनारस से अपने मित्र से छुट्टी लेकर के कलकत्ता गए, जहां उनकी दुकान थी, पार्टनर रहते थे, और पार्टनर को सारी बातें सुना दी और पार्टनर को यही कहा कि देखो भाई, अब तो मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे कुछ और धंधा करने लिए आदेश दे चुके हैं, इसलिए जितना मेरा हिस्सा है संपत्ति का, वो संपत्ति रूप में, धन रूप में मुझे दे दो, दुकान तुम संभालो और बाकी मैं अपना हिस्सा लेके वापस हैदराबाद जाना चाहता हूँ। क्योंकि उसी समय बाबा को एक तार आई अपने घर से, हैदराबाद सिंध से पोतरे का जन्म हुआ था, उस समय बाबा की आयु लगभग 60 वर्ष की थी, ये 1936 की बात है, 60 वर्ष की लगभग आयु थी और पोतरा हुआ था, तो पोतरा होना माना एक तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो बाबा तो अक्सर अपने ग्राहकों को बुलाते थे, पार्टी भी करते थे बहुत कुछ, क्योंकि इतने बड़े रईस थे, लेकिन पार्टी में कभी भी बाबा शराब नहीं रखते थे, कभी नॉनवेज नहीं रखते थे, कोई सिगरेट नहीं पीने देते थे, बड़े सात्विक विचारों के थे, वल्भाचारी थे, वैष्णव कुल के थे, पक्के भगत थे, इसीलिए वो सब नहीं करते थे, बाकी तो ग्राहक तो उनके राजाएं थे ही। तो घर में पार्टी रखी थी और दादा को बुलाया जा रहा था, क्योंकि इतना पोतरे का जन्म हुआ था। लेकिन जब बाबा वापस गए तो परिवार वालों ने देखा कि बाबा का जीवन तो बदल गया है, अब उनको न कोई पार्टी में रुचि, न कोई राजा में रुचि, न कोई हीरे में रुचि, बस वो तो एकांत प्रिय हो गया। तो बाबा ने ये सब देखा, लेकिन बाबा तो उपरांत थे, उनको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था, वो अपने कमरे में एकांत रूप में बैठते थे और अंदर ही अंदर जैसे भगवान से शक्ति लेते थे। तो एक दिन की बात है कि बाबा अपने कमरे में बैठे थे, घर वाले सोचते थे कि आखिर ये बाबा को क्या हो गया है, भगवान उनसे क्या कराएगा, कुछ तो और भगवान बताए कि अभी क्या करना है उनको। तो जैसे वो कमरे में बैठे थे तो उनकी पत्नी, उनके तीन बेटियां थी, दो बेटे थे, ससुराल वाले भी थे, मतलब कारा सारा परिवार था, शादीशुदा थे, बच्चे, बहुत कुछ था, बड़ा परिवार। तो जैसे वो उनके कमरे में गए तो देखा कि वो एकांत में शांत बैठे, आंखें बंद है, लेकिन चारों ओर जैसे उनके प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, बड़ा तेज। और जब सामने गए तो उनकी ललाट पर मस्तक इतना चमक रहा है जैसे कि एकदम कोई रोशनी उनके मस्तक पर पड़ रही हो। पर रोशनी तो थी नहीं, बाबा तो अकेले एकांत में कमरे में बैठे थे, कोई लाइट भी नहीं जल रही थी, कोई ट्यूबलाइट हो कोई बल्ब हो, ये कहां से लाइट आ रही थी, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। और फिर जब और नजदीक गए तो जैसे बाबा के मुख से कुछ शब्द निकल रहे थे, तो नजदीक जाकर के सुनने लगे कि ये शब्द क्या निकल रहे हैं उनके मुख से। वो आवाज भी जो मुख से निकल रही थी वो बाबा की आवाज नहीं थी, जैसे कोई दूर की आवाज उनके मुख से निकल रही थी। और वो शब्द क्या थे? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति रूप हूँ, मैं शिव हूँ। बस ये शब्द निकलते गए, ये शिव परमात्मा ने उनके मुख से अपनी पहचान दी। अब भक्त तो वो विष्णु के थे, शिव के भक्त नहीं थे, हालांकि शिव के मंदिरों में तो पहुंच जाते थे, लेकिन भक्ति तो विष्णु की करते थे। अब ये भी भगवान की बहुत बड़ी चतुराई थी, जो पहले उनको विष्णु का साक्षात्कार कराया ताकि उनको महसूस हो कि उनके इष्ट का उनको दर्शन हुआ और इष्ट उनसे कुछ कराना चाहते हैं। फिर शिव परमात्मा उनके माध्यम द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य आरंभ करना चाहते थे, इसलिए उनको तैयार किया। तो जब शिव ने उनके मुख से अपनी पहचान दी, ये परिवार वालों ने सुना, उनको कुछ पता नहीं चला, उनकी तो आंखें बंद थी, चमक थी चेहरे पर और आंखें बंद थी। तो जब आंखें खोली तो परिवार वालों ने पूछा, बाबा क्या अनुभव किया? वो तो यही उत्सुकता से में रहते थे कि कुछ अनुभव कर रहे हैं, मम्मी बताए क्या अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने आसपास देखा तो आंखें बाबा की लाल लाल, जैसे बल्ब आंखों में चमक रहे हो, ऐसे परिवार वालों ने अनुभव किया। और बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, इतनी तेजोमय शक्ति और इतना तेज प्रकाश, वो प्रकाश मेरे निकट आया और निकट आते 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 इतना निकट आया जो मैंने ऐसे महसूस किया वो मेरे अंदर चला गया और इतनी शक्ति मुझे मिली उससे। अब वो शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई वो मुझसे कुछ कराएगी, ये भगवान की शक्ति मुझसे कुछ कराएगी, भगवान को मुझसे कुछ कराना है। और इतनी शक्ति उनको महसूस हुई। और उसी समय जैसे पत्नी बच्चे सामने खड़े हैं और पत्नी ने देखा कि बाबा को देखते देखते बाबा का चेहरा गुम, ये सफेद वस्त्र पहनते थे बाबा, धोती कुर्ता साधारण जैसे सब पहनते बुजुर्ग लोग, वही पहने हुए थे, लेकिन बाबा को देखते देखते वो धोती कुर्ता वाला व्यक्ति सफेद बाल उस प्रकार से वो गुम हो गया आकार, और उनकी जगह पर विष्णु खड़े हैं, विष्णु चतुर्भुज खड़े हैं, या कोई देखे श्री कृष्ण खड़े हैं, श्री नारायण खड़े हैं, जैसे पूर्णमासी के दिन ये सत्यनारायण की कथा होती है तो सत्यनारायण का जो फोटो होता है चित्र देखते हैं, वो रूप उनके सामने खड़ा है, चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म, और वो रूप उनके सामने खड़ा है। और बच्चों को और सारे जैसे जो सामने थे उनको जैसे वरदान दे रहा है, तथास्तु। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि ये साधारण रूप बदल करके उनके द्वारा जैसे उनसे विष्णु के दर्शन लोगों को होने लगे। अब ये बात इतनी फैल गई कि जो दादा को देखता है या दादा की उन पर दृष्टि पड़ती है उनसे उन यानी दादा से विष्णु के दर्शन होते हैं। ये इतनी बड़ी न्यूज बन गई जो विदेशों में अखबारों में आ गया कि हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है, उसके पास चमत्कारी शक्ति है कि जो उनको देखता है या जिनको वो देखता है उनको यानी उनको इनसे विष्णु के दर्शन होते हैं। फिर तो धीरे धीरे लोग आने लगे, जैसे आग की तरह ये न्यूज चारों ओर फैल गई। बाहर से भी लोग आने लगे बाबा को देखने के लिए कि इनको देखने से भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि विष्णु के भक्त थे, श्री कृष्ण के भक्त थे, जो भी वहां हिंदू लोग थे अधिकतर तो कृष्ण के ही भक्त थे। फिर तो और चमत्कार होने लगे कि लोगों को घर बैठे विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार इनसे हुआ। ये जैसे सामने खड़े हैं और ये गुम हो गए देखते देखते, और इनकी जगह श्री नारायण खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, ऐसे वो देखने लगे। फिर जब उनके नजदीक गए तो देखा कृष्ण गुम हो गया, ये खड़ा है। फिर कृष्ण को ढूंढने लगे तो कृष्ण दूर खड़ा है और वो कहता है मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, ऐसे में नहीं मिलूंगा, इनके पास जाओ। तो कईयों ने तो इनको देखा ही नहीं था, सब तो नहीं जानते थे, तो ढूंढते रहे कि कौन है ये सफेद वस्त्रधारी जिनके द्वारा हमें श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। तो ऐसी लहर फैल गई हैदराबाद सिंध में जो बात मत पूछो। और जब बाबा से पूछते थे कि ये शक्ति आप में कहां से आई, बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति है ही नहीं, मैं तो आपकी तरह ही हूँ, एक गृहस्थी व्यक्ति, परिवार वाला, भक्त, विष्णु की पूजा करने वाला, गीता पाठी, मुझे मेरे पास ये शक्ति कहाँ से आई, ये शक्ति मेरी नहीं है, ये ईश्वर को कुछ कराना है, वही चमत्कार दिखा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर बाबा जब गीता उठाते थे सुनाने के लिए तो गीता के पुस्तक को तो जैसे उठाया, अभी खोले ही खोले जब तक कोई अध्याय, उसके पहले ही शिव परमात्मा उनके तन में प्रवेश हो जाते थे और उनके मुख से ज्ञान देना शुरू कर देते थे। तो बाबा को लगता था ये मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, और परिवार वाले भी महसूस कर रहे थे ये नहीं बोल रहा है, कोई दूसरी शक्ति बोल रही है इनके द्वारा। भाषा भी जैसे बदली हुई, इतनी ऊंच कोटि की ज्ञान की भाषा इनके मुख से निकल रही है, और किताब वहीं का वहीं, नहीं तो बाबा किताब गीता का पुस्तक उठा करके पढ़ते थे श्लोक और उसका अर्थ करते थे, लेकिन बिना कुछ किए किताब बंद और शिव परमात्मा उनके मुख द्वारा बोल रहे थे। फिर तो देखते ही देखते जो साक्षात्कार बाबा को हुए, विनाश के साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार, परमधाम का साक्षात्कार, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार, जो जो साक्षात्कार इन्होंने किए वो औरों ने भी करना शुरू कर दिया। अब ये चमत्कार बढ़ता गया। और दूसरी बात क्या हुई कि उस सत्संग में बहनें ज्यादा आती थी, महिलाएं ज्यादा आती थी पुरुषों की बजाय, पुरुष भी आते थे लेकिन महिलाएं ज्यादा थी और कन्याएं कुमारियां ज्यादा थी। तो शिव परमात्मा का आदेश मिला कि अब इन कन्याओं को कुमारियों को आगे करो, और उन कुमारियों में आप भी थी, आपका नाम राधिका था, आप स्कूल पढ़ती थी, 16 साल की थी, मैट्रिक पढ़ती थी, और आपके पिता ने शरीर छोड़ा था तो माँ बहुत दुखी थी, इसीलिए माँ को कुछ शांति मिले, किसी ने कहा कि तुम दादा के पास जाओ तुमको वहां शांति मिलेगी। तो क्योंकि जो भी बाबा के पास आते थे बाबा उनको ज्ञान देना शुरू करते थे, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वभाव शांति है, दीवारों पर आत्मा के चित्र निकालते थे और उनको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जैसे चित्र दीवारों पर निकाल करके खुद ही, अब उस समय ये चित्र तो थे नहीं, और उनको समझाते थे। तो कई ऐसी महिलाएं जो बहुत दुखी थी अपने घरों में, किसका पति गुजर गया, विधवा थी, तो उस समय समाज में पुरुष प्रधान समाज था, नारी को कोई स्थान नहीं था। नारी का तिरस्कार होता था, नारी का शोषण होता था, बहुत कुछ। नारी के इतने दुख मिलते थे, वो चार दीवारों में ही बंद रहती थी, कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं। और पुरुष लोग तो व्यापार करते थे, विदेशों में जाते थे, न जाने क्या क्या करते होंगे, और बिचारी उनकी पत्नी चार दीवारों में कैद उस प्रकार से। और अगर पति गुजर गया तो एक साल तक तो काले काले कपड़े पहन करके, सिर को ढक करके बस रोते ही रहना, रोते ही रहना, रोते ही रहना, और कुछ नहीं। मानो इतने उनको सितम भी मिलते थे और कष्ट भी मिलते थे, जैसे कि उनका जीवन व्यर्थ ही चला गया। अब यहाँ उनको ही साक्षात्कार हुए, कन्याओं माताओं को अधिक हुए, और शिव परमात्मा का संकेत मिला कि अब इन बहनों को तैयार करो। तो ये अपनी माँ को लेकर के आई थी, क्योंकि इनके पिता ने शरीर छोड़ा था। तो जैसे माँ सामने आई, बाबा को देखा, बस बाबा से उनको साक्षात्कार हो गया, और एकदम जैसे अपना जीवन उसमें समर्पित कर दिया। और आपने भी अपना जीवन समर्पित किया। कल आप गुलजार दादी से मिले, वो भी 9 साल की थी, उनके पिता ने भी शरीर छोड़ा था, तो माँ इनको लेकर के आई और आते ही समर्पित हो गई। दादी रतन मोहिनी जो कल आपको शाम को मिली, वो 12 साल की थी, मानो उसी आयु के थे। वो माँ उनको लेकर के आई और बच्ची ने, माँ ने जैसे बाबा को देखा, बस समर्पित हो गए, मानो अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहाँ परमात्मा का जैसे आदेश मिला कि श्री कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करो। दादी प्रकाशमणि जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है, वो भी दादी मम्मा की तरह ही 15-16 साल की थी उस समय, और वो भी 10वीं कक्षा पढ़ती थी, 15 साल की थी। उनको भी घर बैठे दिव्य साक्षात्कार हुआ पिताश्री ब्रह्मा बाबा का, और वो कैसे रूप बदल गया, कृष्ण हो गया। वो कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। इनके पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे हैदराबाद सिंध में। इनकी जन्म पत्री बनाई थी तब, जैसे मालूम था कि मेरी बेटी तो मीरा जैसे बनेगी, कृष्ण को अपना जीवन देगी, यानी पवित्र रहेगी। तो ये जैसे पिता को पता ही था। और दादी भी, उनका नाम रमा था, वो कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। पिता ने मंदिर बना करके दिया था, तो वो मंदिर में जाके कृष्ण को जगाती थी, शाम को कृष्ण को सुलाती थी, मतलब उनकी पूजा भक्ति कीर्तन भजन यही सब करती थी और पढ़ती भी थी। तो उनको घर बैठे ये साक्षात्कार हुआ, और जब वो बाबा के सामने आई तो बस बाबा ने देखा, बाबा की दृष्टि पड़ी, वो चली गई ध्यान में। ऐसे अनेक सारी ये बहनें हुई और उनका अपना जीवन जैसे इसमें समर्पित किया। तो परमात्मा का आदेश मिला कि अभी इन बहनों को आगे रखो, और जो कुछ आपकी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, ये बहनों के आगे समर्पित कर दो। एक फिर उसके बाद 8 बहनों की एक जैसे कमिटी बनी, और सारी संपत्ति बाबा ने इन 8 बहनों के नाम पर विल कर दी, जो भी उनकी थी, जिसमें लीडर बनी मम्मा, क्योंकि इनकी आवाज बहुत सुरीली थी, बहुत मीठी आवाज थी, बहुत अच्छा गीत गाती थी, सितार बजाती थी, बहुत अच्छी डांसर थी, अपने स्कूल में प्राइजेस लेती थी। अब वो जब आ गई तो एक जैसे हैदराबाद सिंध में आके, अच्छा ये भी वहां गई, ये भी वहां गई, मानो जैसे वो समर्पित ही हो गए। और बाबा ने इनको आगे किया, ये लीडर बनी। तो जैसे बाबा ओम की ध्वनि करते थे, ओम ओम की ध्वनि करते ही अनेक साक्षात्कार करने लगते थे बाबा से श्री कृष्ण का। और ये जब ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा, राधे का साक्षात्कार होने लगा, महालक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा। इनका नाम भी राधे ही था, लौकिक नाम भी वही था, राधा। तो जैसे साक्षात्कार उन दोनों से होने लगा, तो जैसे बाबा ने इनके ऊपर बागडोर दी कि अभी तुमको संभालना है, और बाबा कश्मीर चले गए अपने परिवार के साथ। और ये सब घरों में ही रहते थे अपने, लेकिन जैसे अपना जीवन इसी में दे दिया, बस सत्संग करना और साक्षात्कार करना, और मम्मा इनकी लीडर बनी। तो जब बाबा एक महीने के बाद आए तो देखा तो सत्संग तो बहुत बढ़ गया। वहां कश्मीर से बाबा पत्र लिखते थे जिसमें शिव परमात्मा उनके हाथ द्वारा कलम द्वारा लिखवाते थे, वो नहीं लिखते थे, जैसे उनकी शक्ति लिखती है, और वो भेजते थे और ये पढ़ के सुनाती थी, और उसको ही सुनते सुनते सभा तो बहुत बढ़ गई। और फिर लोगों ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि फिर जब शिव परमात्मा का आदेश मिला कि अब अपने जीवन को पवित्र बनाना है, योगी बनाना है, नई सत्युगी सृष्टि की रचना करनी है, उसके लिए देवी देवताओं को जन्म लेना है इस संसार में, ये संसार बदलना है, सत धर्म की स्थापना होनी है, और इस सत धर्म के लिए पवित्रता की शक्ति चाहिए। तो उन कन्याओं माताओं ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। लेकिन जो पुरुष वर्ग था उन्होंने तो विरोध किया, ये तो हमारा अधिकार कौन आया छीनने वाला, इसने ये कैसे छीन सकता है हमारा अधिकार। तो ये कहता था ये मेरी शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये शिव परमात्मा इस मुख के द्वारा आदेश देकर जाते हैं, मैं नहीं देता हूँ। तो मानो उस समय तीन क्रांतिकारी बातें हुई जिससे ये संस्था की शुरुआत हुई। पहली क्रांतिकारी बात थी साक्षात्कार, दूसरी थी बहनों माताओं को आगे करना, तीसरी क्रांतिकारी बात थी कि सबको एक पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करवाना। अब ये शक्ति जो बहनों माताओं में आ गई तो बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि केस भी हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, वो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन ये बाबा कहते थे ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, पर ये भगवान का कार्य शुरू हुआ, और परिणाम स्वरूप जीत तो ईश्वर की होनी है, इंसान की कहाँ होगी, उनको अपना कार्य करवाना है। तो आखिर कर क्या हुआ कि करीब 385 भाई बहने, जिसमें कुछ परिवार के परिवार भी थे, और अधिकतर बहने माताएं थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसमें स्वाहा किया, और बाबा सारे परिवार को लेकर हैदराबाद सिंध से कराची चले गए। ये 1937 की बात है, एक साल तक इस प्रकार के चमत्कार हुए, और फिर कराची में कई बंगलोज लिए किराए पर, एक में भाई रहते थे, एक में माताएं, एक में बच्चे, एक में कुमारियां, मतलब इस प्रकार से, और एक में बाबा का अपना परिवार, उनका परिवार तो साथ में ही था, उनको कोई छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं था। तो इसीलिए 1937 से लेकर के 1950 तक करीब 14 साल ऐसी भट्ठी बनी, जैसे भट्ठे में ईंटे पकती है, ऐसे भट्ठी के रूप में ये करीब 385 भाई बहने पूर्ण रूपेण दुनिया की निगाहों से दूर एकांतवास में रहने लगे और तपस्या की, और इन्हीं 14 सालों में बहुत कुछ दिव्य साक्षात्कार उन्होंने किए, जिसमें दादी गुलजार बहुत ज्यादा साक्षात्कार करती थी, और दादी गुलजार ने सबसे पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार तो होते ही थे जैसे ब्रह्मा जैसे बाबा को हुआ, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार सबसे पहले गुलजार दादी ने किया, जिसमें दादी ने देखा एक बहुत सफेद सफेद दुनिया, परम धाम लाल लाल दुनिया, ये सफेद सफेद दुनिया जैसे बादलों के बीच की दुनिया, चारों ओर बादल ही बादल, रुई जैसे चारों ओर, और उसमें लाइट ही लाइट, और वो सफेद दुनिया में एक फरिश्ता देखा, इनका रूप ऐसे फरिश्ते के रूप में देखा, और उस रूप ने इनको कहा दादी गुलजार को कि ये पिताश्री संपूर्ण होकर के ये फरिश्ता रूप बनेगा। अब ब्रह्मा का भी टाइटल शिव परमात्मा ने इनको दिया, कि इनके द्वारा नई सृष्टि की रचना करनी है और इनको टाइटल दिया जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी। कई समझते इनको कैसे ब्रह्मा कहते हैं, हाँ ये कैसे ब्रह्मा हुआ। वास्तव में ब्रह्मा को जो शास्त्रों में या भक्ति मार्ग में चार मुख वाला बताते हैं, और सोचने की बात है चार मुख की तो बात नहीं है, ये चारों दिशाओं में परमात्मा का ज्ञान फैला इसलिए चार मुख दिखाए और हाथों में शास्त्र दिखाए हैं, कमंडल दिखाया है, माला दिखाई है और विष्णु की नाभि से निकलता हुआ ब्रह्मा जी को दिखाया है। अब इसके पीछे भी बड़ा राज है कि ब्रह्मा कौन बनता है। ऐसे नहीं कि कोई ब्रह्मा ऊपर से ही आया है, लेकिन वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सत्ययुगी आरंभ में थी वो 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में साधारण रूप में है, जिनके द्वारा परमात्मा फिर से नई सत्ययुगी दुनिया की रचना करते हैं और उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो शास्त्रों में है, भक्ति मार्ग में है, ये यादगार के रूप में है, लेकिन आए कब थे। कई कहते आप लोग इनको ब्रह्मा कहते हो, भगवान कहते, हम कहते नहीं, भगवान नहीं कहते हैं, देवता भी नहीं कहते हैं। देवताओं को तो दाढ़ी मूछ तो होती नहीं है, ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, है ना। पुष्कर में जाइए, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जी है, खेड़ ब्रह्मा में भी यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, बाकी कहीं नहीं होगा ब्रह्मा का मंदिर। जैसे विष्णु के मंदिर है, शंकर के मंदिर है, कृष्ण के मंदिर है, राम के मंदिर है, ब्रह्मा जी का ऐसा मंदिर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती इतनी। केवल दो ही मंदिर है भारत के अंदर मुख्य रूप से। तो ब्रह्मा को किस रूप में हम देखें, मनुष्य रूप में। दाढ़ी मूछ देवताओं को नहीं होती, ऋषि मुनियों को होती है। तो जो सतयुगी देवताएं हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, ये सब देवता के रूप में, विष्णु का साकार रूप है। आज भी हम जानते हैं कि कैसे जो भारत में राजाएं महाराजाएं रहे उनके लिए भी कहते थे ये विष्णु का साकार रूप है। आज तक भी भले राजाई चली गई, अभी भी उन राजाओं का इतना मान है, मान है ना, हाँ, राजस्थान के भाई बहने जानते हैं कैसे उनका अभी भी इतना मान है, जो लोग उनको इतना पूजते हैं अभी तक भी। गांव के तो लोग बहुत पूजते हैं उनको, विष्णु का अवतार मानते हैं अभी तक भी। नेपाल में भी अभी तक जो राजा का राज्य था उनको विष्णु का अवतार ही मानते थे, क्योंकि जो भारत के अंदर राजाएं होके गए वो विष्णु का अवतार है। तो श्री कृष्ण ने भी राज्य किया, श्री राम ने भी राज्य किया, श्री नारायण ने राज्य किया, ये विष्णु के साकार रूप है। ब्रह्मा कभी राज्य नहीं करते, वो तो साधारण रूप है, जिनके द्वारा वो विष्णुपुरी की स्थापना शिव परमात्मा कराते हैं। तो इनका नाम रखा पिता श्री, प्रजा पिता ब्रह्मा, प्रजा का पिता। तो इनकी दृष्टि ही बदल गई, वो पांच बच्चे ही बच्चे नहीं लेकिन सारा विश्व उनका परिवार बच्चे हो गए, ब्रह्मा के बच्चे। इसीलिए शास्त्रों में दिखाते कि ब्रह्मा जी को संकल्प आया मैं सृष्टि रचूं और एक से अनेक हो गया। अभी एक से अनेक कैसे होता है, कैसे होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। अब मुख से इंसान थोड़ी निकल सकता है, इंसान तो जैसे बच्चा पैदा होता है गर्भ से वैसे ही पैदा होगा, मुख से कैसे निकल सकता है। लेकिन मुख से ज्ञान निकलता है, ये ज्ञान जो शिव परमात्मा ने दिया ब्रह्मा के मुख द्वारा, और उसको जिन्होंने सुना उनके जीवन में एक परिवर्तन आ गया, वे द्विज बन गए, नया जन्म ले लिया, आध्यात्मिक जन्म ले लिया। और उस प्रकार से ये 385 भाई बहने समर्पित हुए और उनको अंदर ही अंदर जिस साक्षात्कार में विनाश देखते थे। और उसी समय 14 वर्षों में आपको मालूम होगा दुनिया का नक्शा बदल गया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ जिसमें यूरोप का तो नक्शा पूरा ही बदल गया, कम्युनिज्म आ गया रशिया के अंदर, और चारों तरफ ईस्ट यूरोप कम्युनिस्ट देश बन गए और यूएसएसआर बन गया। मानो कम्युनिज्म चारों ओर फैल गया, साम्यवाद चारों ओर फैल गया और भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। ऐसे ही कहेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये सब उन्हीं 14 सालों के अंदर हुआ है। और इस समय ये 14 सालों में ये बहनें बिल्कुल एकांतवास में अपने नई सतयुगी दुनिया की रचना के लिए तपस्या कर रही थी। जैसे पेड़ की जब कलम लगता है तो पुराने पेड़ से नया पेड़ बनाने के लिए कलम लगाते हैं, तो जैसे कलम बनके तैयार होता है उसके बाद फिर पुराना झाड़ खत्म करते हैं। तो कलम तो गुप्त ही होता है, उसकी जड़ें गुप्त होती है, वो दिखाई नहीं देती है। तो ये तपस्या के बल से परमात्मा सतयुगी दुनिया की रचना करने लगे और उन 14 सालों में इन बहनों में एक नई शक्ति आई। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, भारत इंडिपेंडेंट हुआ, अंग्रेज चले गए, वह दो टुकड़े करके चले गए। अब ये तो पाकिस्तान में ही रह गए क्योंकि सिंध पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय का दृश्य बड़ा ही डरावना था। जो वहां हिंदू थे उनको तो ऐसे भागे, हाथ खाली, नंगे पैर, जेब खाली, सब कुछ छोड़ करके, नहीं तो उनका कत्ल होता था। और यहाँ के मुसलमान वहां गए, मानो एक सिविल वॉर का रूप उसी समय चारों ओर हो गया, जो महात्मा गांधी भी उसको सहन नहीं कर सके। ये सब इतिहास में आता है, परंतु ये होना था। भावी ताली नाही तले, ये होना ही था। बापू गांधी जी की तो इच्छा थी कि राम राज्य हो, एक धर्म, एक भाषा, एक प्राण, एकता हो, पर राम राज्य के बदले हमने देखा रावण राज्य ही आ गया, और क्या कहेंगे। लेकिन ये संस्था तो हैदराबाद सिंध से कराची में ही रही और भारत का तो बंटवारा हो गया। तो शिव परमात्मा ने संकेत दिया कि आपको भारत में जाना है आखिरकार, और भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा। सारे विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश भारत से मिलना है, सारे विश्व को प्रकाश देगा आध्यात्मिकता का। तो जब भारत में फिर गणतंत्र हुआ 1950 में 26 जनवरी को, तब शिव परमात्मा का संदेश मिला कि अब भारत में जाओ और एक पहाड़ पर जाओ। तो ये माउंट आबू सबसे नजदीक पहाड़ है पाकिस्तान के, कराची के। अगर जैसे आप परसों गए होंगे, देखा होगा आपने, पीस पार गए होंगे, पता नहीं बादलों में कुछ दिखाई दिया या नहीं, तो जहाँ ईस्ट के वेस्ट के तरफ पूरा रण है और पहाड़ है, और उन पहाड़ों के पीछे ही कराची है क्योंकि पश्चिम बॉर्डर पर हैं हम, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। और एक चीज भी वहाँ छोड़ी नहीं, सब कुछ लेकर के आए। पाकिस्तान सरकार का बड़ा सहयोग मिला, पूरा शिप हमें दिया कि आप भले सब कुछ अपना ले जाओ, हिंदुस्तान जाना हो तो भारत में आए और माउंट आबू में आकर के रहे। क्योंकि ये बाबा को शिव परमात्मा ने जैसे संदेशियों को, ट्रांस मैसेंजर्स को ये बताया कि आप पहाड़ पर जाएंगे, अनेक वहां महल है, मकान है, जैसे उनको साक्षात्कार में दिखाया। तो माउंट आबू यही स्थान है। उस समय जब अंग्रेजों का राज्य था तो ये माउंट आबू राजाओं के लिए समर पैलेस उनकी यहाँ होती थी। तो माउंट आबू में अनेक राजाओं के महल हैं, अलवर पैलेस, जोधपुर पैलेस, जयपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, कई महल हैं। और राजा लोग यहाँ आकर के गर्मियों में 3 महीना रहते थे, अप्रैल, मई, जून। अंग्रेज भी यहाँ आते थे। दिलवाड़ा मंदिर जो बनाया गया वो जैनियों ने बनाया, लेकिन उस समय ये रोड नहीं था जिस रोड से आप माउंट आबू गए। पहाड़ों से ही वो आते थे, हाथियों पर, घोड़ों पर, और राजाओं ने जो उनके जो वजीर थे उन्होंने देखो दिलवाड़ा मंदिर बनाया, राजा के वजीरों ने बनाया, तो राजाओं के पास कितना धन होगा, सोचने की बात है। वजीरों ने इतना बनाया तो ये सब वहां लिखा गया है। तो देखिए इतनी संपत्ति थी राजाओं के पास, लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ, सब राजाई खत्म हो गई, एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, और राजाई खत्म हो गई तो इनके ऊपर सीलिंग आ गई, इतना वो जमीन इतना मकान नहीं रख सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, राजाओं ने वो होटल बना दिए, स्कूल बना दिए। तो हमारी संस्था जब यहाँ आई तो सबसे पहले भरतपुर राजा की कोठी है, महल है, अभी वो होटल बन गया है, लेकिन वो उस समय खाली था तो वो किराए पर लिया, और किराए पर लेकर के वहां 4-5 साल रहे। लेकिन जैसे भारत में आए तो जो समर्पित हुए उनके रिश्तेदारों को पता चल गया कि ये सब भारत में आए हैं, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। तो सबसे पहले बाबा ने बहनों को दिल्ली भेजा, दिल्ली, मुंबई, बनारस, इलाहाबाद, बेंगलोर, ये सब शहरों में वो गए जहां जहां उनके रिश्तेदार रहते थे, और उसके आधार पर वहां ज्ञान देना शुरू किया। और ज्ञान देकर के इतने वो प्रसन्न हुए, लेकर के उनके रिश्तेदार, पड़ोसी पड़ोसी, जो अनुभव बहनों ने हैदराबाद सिंध में किया 1950 के बाद, ये बहनें जब भारत के कोने कोने में गई तो दूसरे लोगों ने बहनों से वही साक्षात्कार किए, अभी और चमत्कार होने लगे। और धीरे धीरे सेवा केंद्र खुलते गए और ये संस्था आगे बढ़ती गई। फिर कोटा हाउस लिया, कोटा के राजा का महल वो लिया, कोटा और धौलपुर के राजाओं के महल है, वो आजकल राजस्थान सर्किट हाउस है। तो 1958 में आए माउंट आबू 50 में, लेकिन अभी जो पांडव भवन जहां आप गए परसों, बाबा का कमरा देखा, शांति स्तंभ देखा, या झोपड़ी देखी, हिस्ट्री हॉल देखा, इनका नाम पहले था पोकरान हाउस। पोकरान जो रणभूमि है राजस्थान में, जहां एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया गया, वो पोकरान के ठाकुर की वो कोठी है, जो पुरानी है, जहाँ बाबा का कमरा है, वो उनका ही छोटा सा मकान था, बाकी बहुत जमीन थी, चारों ओर जमीन थी, बहुत खुली जमीन, पहाड़ थे, तो वहां पर वो खरीद लिया और उसके बाद सारे मकान बनाने लगे। फिर तो वो मकान भी छोटे पड़ गए, फिर ज्ञान सरोवर बना वो छोटा पड़ गया, फिर शांति वन बना, अब ये भी छोटा पड़ रहा है, हालांकि इतना बड़ा हॉल है तो भी छोटा पड़ जाता है जब इतने हजारों भाई बहने आते हैं। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा उसी पुराने कमरे में ही रहे, वो कहीं नए मकानों में नहीं रहे। और 1969 18 जनवरी 93 वर्ष की उम्र में आपने अपना देह त्याग किया, और जगत अम्बा सरस्वती मम्मा ने 48 साल की उम्र में 24 जून 1965 को अपना देह त्याग किया, लेकिन बाबा ने 69 में अपना देह त्याग किया 93 वर्ष की उम्र में। और कैसे उनका सारा दिन इतना अच्छा बीता, कभी बाबा चश्मा नहीं पहनते थे, कभी लकड़ी नहीं उठाते थे, यानी उस उम्र में भी बाबा बहुत ही तेज चलते भी थे, सीधा बैठते थे, नहीं तो 93 वर्ष की उम्र में क्या होता है, सब अंग शिथिल हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने अंतिम घड़ी तक सेवा की। अंत की घड़ी मानो 18 जनवरी 7:30 से 8:30 तक भी क्लास कराया, वाणी चलाई, और वाणी चलाने के बाद जब बाबा उठे हिस्ट्री हॉल में दरवाजे तक पहुंचे, फिर अंदर आए, आगे बढ़े और सिर झुकाया, और जैसे झुके सबके आगे, और 3 अंतिम शब्द कहे कि बच्चे सदा निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी रहना, अच्छा बच्चों से छुट्टी, बस छुट्टी कह करके बाबा अपने कमरे में गए। करीब 9:15 थे और बाबा अपनी खटिया पर पलंग पर बैठे ही थे, जैसे हम बैठे हैं, दादी जी उनके पास गए, तो जैसे दादी प्रकाशमणि उनके पास गई तो दादी ने देखा कि बाबा की आंखें बंद है, तो बाबा का हाथ पकड़ा। उस समय वो तो 45-46 साल की थी, तो और बॉम्बे में रहती थी, वो यहाँ रहती भी नहीं थी, बॉम्बे के केंद्र संभालती थी। तो दादी बाबा के सामने गई और देखा बाबा की आंखें बंद है तो और ऐसे बैठे हैं, तो बाबा के जैसे हाथ पकड़ा, बाबा बाबा कहा। और उसी वक्त जैसे बाबा ने आंखें खोली, पर एक सेकंड का खेल था, आंखें खोली, हाथ में हाथ और दृष्टि जैसे दादी जी को दी, उसी वक्त आत्मा उड़ गई। मानो दृष्टि और हाथ के द्वारा सारी शक्ति जो कुछ भी था वो विल कर दी दादी जी को, दृष्टि और हाथ, बस आत्मा उड़ गई। दादी को लगा कि ये क्या, ये हाथ ढीला कैसे पड़ गया और सिर झुक क्यों गया, ये क्या हो गया। लेकिन दादी को समझ भी नहीं आया, ये नहीं कि उस अंदाजा भी था कि आत्मा उड़ गई, लेकिन ये तो खेल ही खत्म हो गया। फिर तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने तो कहा आत्मा तो चली गई, अब आपको जो करना है करो, वापस तो अभी आएगी नहीं, खत्म। तो दादी को इतनी शक्ति उस समय मिली और सारे सेवा केंद्रों पर फोन किया, सबको बुलाया, 3 दिन बॉडी को रखा था हिस्ट्री हॉल में ही, और 21 जनवरी 1969 को अंतिम संस्कार किया पांडव भवन के अंदर ही, जहां शांति स्तंभ है वो यादगार स्थान पिताश्री ब्रह्मा बाबा का बनाया। और उसके बाद गुलजार दादी जी जो ध्यान में जाती थी, वो ब्रह्मा बाबा को तो देखती थी संपूर्ण रूप में, वतन में देखती थी, तो जब वो ध्यान में गई, उस संपूर्ण रूप को देखा, तो कहा बाबा आप चले कैसे गए। बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया, केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है, शिव परमात्मा उनके तन में देखा, लाइट के आकार में शिव परमात्मा की आत्मा और ब्रह्मा पिता की आत्मा चमक रही है। और जिसको हम कहते हैं बाप दादा माना शिव पिता और ब्रह्मा दादा, दादा माना बड़ा भाई, तो शिव पिता आत्माओं का पिता और ब्रह्मा पिता अलौकिक पिता, शिव पिता की संतान हमारा अलौकिक पिता, तो शिव पिता हमारे दादा यानी ग्रैंडफादर, तो ये बाप दादा ये कंबाइंड वर्ड, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोड वर्ड है। हम किसको कहते हैं, शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की आत्मा। तो किस प्रकार वो वतन से इस सृष्टि पर आए और इनके तन में प्रवेश हो गए, कई लोग इसको समझते नहीं है, लेकिन जब खुद देखे तब समझ सकेंगे। तो दादी गुलजार को कुछ पता नहीं, वो तो ध्यान में जाती है और ध्यान में आ जाती आंखें बंद हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे शिव परमात्मा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण आत्मा उनके तन में प्रवेश करती है। और उस समय दादी गुलजार का चेहरा ही बदल जाता है, फिर जब वाणी चलाते तो आवाज ही बदल जाती है, सब कुछ ये प्रवेशता है। तो इसीलिए कल आपको बताया जब दादी गुलजार आए कि कैसे बाप दादा का रथ दादी गुलजार, तो ये तो अपना रथ बाबा को दे देते हैं और जैसे उनकी प्रवेशता होती है, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा यहाँ तक कि एक बार 16 घंटा एक ही जगह बैठ करके बाप दादा की वाणी चली है, 16 घंटा। अब 16 घंटा समझ सकते हैं, सब तो कोई तो उठे होंगे आए होंगे और पर वो तो वहीं के वहीं, ये उनकी शक्ति नहीं है। और वो जो वाणी चली जिसमें वाणी के बाद एक एक से मिलना, एक एक को वरदान देना, ये तो एक बहुत सुंदर अनुभव है। जो करे कहते ना गूंगे की मिठाई, वो गूंगा बोले कैसे ये भी एक ऐसी अनुभूति है, जो खुद ही मिठाई खाए तो पता पड़े कि कितनी मिठास है गुड़ में। तो इसीलिए ये तो अनुभव है। आप कहेंगे बहन जी हम भी कर सकते हैं, हम कहते क्यों नहीं कर सकते हो, हर एक को अधिकार है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। पवित्रता की धारणा हो, अन्न की शुद्धि हो, नियमित विद्यार्थी हो सेवा केंद्र पर, ये सब हो तो फिर क्यों नहीं आ सकते। हजारों आते हैं, आप भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम चाहिए। अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कर्मों की गुह्य गति को समझना होगा। कर्म की गति का ज्ञान क्या दिया है, अभी हम यही समाप्त कर रहे हैं और आपको इस बात पर छोड़ रहे हैं कि आप खुद ही सोचना कि मुझे आगे क्या करना है। अच्छा, ओम शांति।
श्रद्धा